सख्येतेन्द्रवादिनो मा भेमाशलसस्पते त्वामभिपरणो नमो जेतारं न प्राजितम्। इस मंत्र में परमात्मा को सखा रूप से कहा है, मित्र रूप से, तो मित्र का दर्जा बहुत ऊंचा माना जाता है। ऐसा देखते लोग व्यवहार में कि जो गुप्त बातें आपस में मित्र एक दूसरे से कह देते हैं वो परिवार के स्त्री पुरुष माता पिता बहन भाई आदि और किसी से नहीं कहा करते हैं। तो इसलिए इस मंत्र में परमात्मा को मित्र रूप से कहा है। तो मित्र मान करके भी अपने भावों को, अपनी भावनाओं को भक्त जो है भगवान के सामने प्रकट कर देता है। अगर उसको सर्वज्ञ कहते हैं तो सब कुछ जानता ही है, तो ये गुण इसमें है। फिर कहा त्वाम अभी प्रणोनो, तो मित्र को भी प्रणाम कहा गया है कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जेतारम अपराजितम, आप सबके विजेता हैं, किसी से आप हारते नहीं हैं, सबको विजय करने वाले हैं, ऐसी प्रार्थना और स्तुति इस मंत्र में की गई है। आज का विषय है हमारा प्रभा रूप जल को माध्यम बना करके, और इसी जिस परमात्मा की एक बात कर रहा हूँ उसका साक्षात्कार करना इस शरीर के अंदर। तो जिस इस प्रभा नाम के जल का संबंध मन के साथ में रहता है, क्योंकि पहला जो जल था जो समाधि का विषय बना अमृत, उसका संबंध था बुद्धि से, और ये उससे नीचे के भाग में मन और बुद्धि की जो सतह है इस प्रकार उन दोनों के मध्य में तो रहता है अमृत जल, और मन से नीचे के भाग में और इंद्रियों के ऊपर रहता ये प्रभा नाम का जल। इस मस्तिष्क के अंदर जल भरा रहता है, भरा तो नहीं रहता मतलब है बारीक रूप में पतले रूप में रहता ही है, जैसे नाक बहने लगता है तो ऊपर मस्तिष्क से बह बह करके आने लगता है, जुकाम आदि हो जाता है या कोई और कारण होते हैं। तो इस प्रभा जल का ये है मन का पोषक, अमृत जल जो था बुद्धि का पोषक था, और ये है मन का पोषक, क्योंकि मन को बहुत कार्य रहता है, 10 इंद्रियों के साथ इसका संबंध रहता है। तो जिस वक्त सत्व प्रधान समाधि होती है तो उस वक्त इसमें कुछ रजोगुण प्रधानता रहती है, और ये प्रभा जल जो है इंद्रिय और इसके बीच में रहता है। जिस वक्त सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म तन मात्राओं का चिंतन करता समाधि की अवस्था में, तो उस वक्त इसकी प्रभा जल की सात्विक अवस्था होती है, और जिस वक्त मन इंद्रियों के द्वारा विषयों का उपभोग करता है, दोनों अवस्थाओं में सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी और स्थूल शरीर के द्वारा भी, ये मन और बुद्धि दोनों के संचालक रहते हैं। तो इसलिए सूक्ष्म होने से ये सूक्ष्म शरीर के साथ में गमन कर जाते हैं, क्योंकि भौतिक विज्ञानवादी सूक्ष्म शरीर नाम की कोई चीज नहीं मानते, ये स्थूल को ही मानते हैं। परंतु अनेक साधनों संसार के अंदर जितने भी संप्रदाय हैं, कुछ लाखों को ले छोड़ करके बाकी करोड़ों की आबादियां जो हैं हुआ वो अध्यात्मवादी हैं और मोक्ष आदि परमात्मा आदि इन चीजों को मान कर करके अपने धर्म का अनुसरण करते हैं। ईसाई भी, मुसलमान भी, जैन भी, बौद्ध भी मानते हैं, बौद्ध भी स्वर्ग आदि तो मानते ही हैं। तो इसलिए सूक्ष्म जगत मानना पड़ेगा। स्थूल जगत तो हमारे भोगने में आ रहा है, सूक्ष्म जगत का हमें पता नहीं लगता। पर जब हम ध्यान अगर इनका विकिरण करते चले जाएं, जो हमारे भोगने के पदार्थ हैं, तो एक ऐसी अंत में सूक्ष्म अवस्था आ जाएगी जो एटमों से भी सूक्ष्म सी स्थिति रहती है, तो वो इनका उपादान कारण मानना पड़ेगा। कोई ये ही आवश्यक नहीं है जो कि सारे पदार्थ इंद्रियों का ही विषय बने। साइंसदान वर्तमान के भौतिक विज्ञानवादी प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। अब हम इनसे पूछते हैं, तुम्हारी जो शांति की कोई अवस्था आती है, आनंद की जो अवस्था आती है, जब आप भी कभी बैठते हो किसी पदार्थ के संबंध से, बाद में तुम्हें स्मरण करते हुए वहाँ शांति और आनंद की अनुभूति होती है। आप प्रत्यक्षवादी तो हैं, नेत्रों से सब कुछ देखना ही मानते हैं, उस शांति के आनंद के रूप को बतला दो। क्रम व्यापार को तो उसकी गतियों को तो बतला देंगे, वहाँ से वाइब्रेशन सी होती रहेंगी, पर उसके रूप को आप बतला दो, वो भी तो तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष का विषय है, उसके रूप को बतलाओ क्या रूप है। तो ये कोई तो इससे ऊपर भी या बुद्धि भी या इंद्रियों के साथ जब तक बुद्धि का संयोग संबंध नहीं होता है, तब तक इंद्रियें भी रूप को नहीं बतलाती। तो वास्तविक में बतलाने की, विभेद करने की जो योग्यता है वो बुद्धि में है, ज्ञान में है। तो इसलिए ये कोई भिन्न पदार्थ सूक्ष्म शरीर से अलग ही शक्ति है, सूक्ष्म शरीर की माननी पड़ेगी। जैसे आप स्थूल बुद्धि को मान करके भी उसके रूप को बताने के लिए तैयार नहीं है, मन के भी रूप को बताने के लिए तैयार नहीं है, तो इसी प्रकार ये सूक्ष्म पदार्थ भी हो सकते हैं। और जैसे आपको रूप का ज्ञान नहीं हुआ है अभी तक, तो इसी प्रकार सूक्ष्म पदार्थों का भी। आप तो कुछ वर्ष पहले एटमों का और कोई खंड ही नहीं मानते थे, इतने पे आन के बैठ गए थे और डंके बजाने लगे थे, बस इससे आगे संसार का और विकरण नहीं होता। अब तुम उसके पास एनर्जी में पहुंच गए हो, तो ये सब तुम्हारी अभी भ्रांति ही है, समझे। सूक्ष्म शरीर आदि को नहीं मानना, आत्मा को नहीं मानना, चेतन सत्ता को नहीं मानना। हम पंचभूतों की सारी सामग्री तुम्हें सिवाय माता के गर्भ को छोड़ करके तुम बना के दिखा दो। इस चेतना शक्ति को, इस शरीर को तुम्हारे पास सब प्रकार के नेट रख देते हैं, तुम इस शरीर को बना दो, इस प्रकार की चेतना को बना दो। चेतना को भी बनाने के लिए तैयार हुए तो ट्यूब में रख करके रज और वीर्य को भी लिया, उपादान कारण को लिया, जहां चेतना वर्तमान रहती है, जिसमें चेतना का आधान होता है। रज और वीर्य में ही ऐसी शक्ति है जहां चेतना का आवास होकर के ज्ञान और कर्म रूप व्यापार प्रारंभ होने लगते हैं। ज्ञान और कर्म तो जड़ पदार्थों में भी होता है, वायु में भी जैसे कर्म हो रहा, अग्नि में, जल भी चल रहा, अग्नि में भी कर्म वर्तमान है, पर जिस प्रकार का कर्म हमारे मस्तिष्क से होता है वो कर्म उस प्रकार का उसमें नहीं है। भले गति का है तो उसके पीछे कोई सर्वव्यापक चेतन सत्ता हो, पर जिस प्रकार हमारे इस मस्तिष्क में विज्ञान होता है, ऐसा विज्ञान वहां जल में चलने में नहीं है। तो वो मानना पड़ता है, अनुमान करना पड़ता है, ये ठीक है, प्रत्यक्ष पूर्वक ही अनुमान हुआ करते थे, पर योगियों को प्रत्यक्ष होता है। जैसे रूप का भी प्रत्यक्ष मैंने अपने आत्म विज्ञान में बुद्धि माइंड आदि के इंद्रियों के सबके रंग रूप दिए, मेरी तो समझ में आया है, मुझे तो क्या ये ही बुद्धिमान है, समझदार है। अगर मैं भी कोई किसी प्रकार की मशीन बनाकर इजाद करूं तो इन रूपों को भी बतला दूं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत से पदार्थ अनुमान से ही हुआ करते हैं, अनुमान से सिद्धि हुआ करती है, शब्द प्रमाण से सिद्धि होती है। ये ठीक है, शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष पूर्वक ही हुआ करते हैं, पर वो जो प्रत्यक्ष होता है वो योगियों को ही होता है। अभी इतने प्रकार के इतने ऊंचे योगी आप नहीं बने हैं, अभी वैसे योगी हो जो आज से 8-7 वर्ष पहले एटम पर ही संसार को ठहरा दिया था, अब एनर्जी पर पहुंचे हो, अब इसका भी आ गए तुम्हें, इसका भी और सूक्ष्म भाग जाना पड़ेगा, और फिर उस सूक्ष्म भाग में कोई एक ऐसी स्थिति आएगी आपको चेतन सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। हमें परिणाम क्रम है, अवस्थान्तर भेद होते चलते हैं, वहां रूपों में परिवर्तन होता रहता है पदार्थ के, क्योंकि पदार्थ के साथ में ही रूप जो है पदार्थ का गुण विशेष है, और गुण गुणी का संबंध होता है, गुण हमेशा गुणी के अंदर रहता है। यहाँ दो बातों का भेद मान रहे हैं लोग, एक तो ये कहते हैं कि गुण जो मैं तो पदार्थ का ही परिणाम विशेष गुण मानता हूँ, गुण उससे कोई भिन्न चीज नहीं है, वह उसकी एक अवस्था ही विशेष है। परंतु ये भौतिक विज्ञानवादी वैज्ञानिक लोग भी, इन लोगों ने भी इनका ही आश्रय माना है, इन्होंने एक प्रकार से अभाव से भाव की उत्पत्ति मानी। हम कहते हैं भावात्मक पदार्थ से भावात्मक पदार्थ की उत्पत्ति, अभाव नाम की कोई चीज नहीं, इसलिए इन्होंने अभाव को भी एक प्रमाण और मान लिया है, छह प्रमाण मान करके अभाव को भी प्रमाण मान लिया है। तो इसलिए क्योंकि प्रकृति में भूतों में परिणाम क्रम है, इनमें रूपांतर पैदा होता रहता है, चेतन में परिणाम क्रम नहीं है, उसका सदा एक ही रूप रहता है। रूप तो मानना पड़ेगा, जब कोई पदार्थ है और वो ज्ञान का विषय बनती है, आत्मा या परमात्मा ज्ञान का विषय बनते हैं, यहाँ भी आकाश है बाहर भी एक समान, इस आकाश में सड़क के आकाश में कोई अंतर नहीं है, तो इस शरीर के आत्मा में और बाहर के विश्वव्यापी आत्मा में क्या अंतर होगा, जब बाहर के सड़क के आकाश में अंतर नहीं है, तो इस मकान के आकाश में क्यों भेद मानते हुए, जैसा ही आकाश है। तो इसलिए चेतन सत्ता एक ही माननी पड़ेगी, और वो चित्तों की अवस्था में आत्म रूप समझा लोगों ने दे दी है, क्योंकि छोटे से शरीर के साथ उसका व्यवहार होने लगा। आकाश भी तो शरीर में वर्तमान है व्यापक रूप से, पंचभूतों का जब देह बना है, तो उस विषय पर हम जा करके वह परमात्मा के रूप की अनुभूति होती है, पर उसके समान सादृश्य और कोई तत्सदृश और कोई पदार्थ नहीं जिसके साथ उसके रूप की तुलना कर सके। प्रकृति के तो अनेक कार्यात्मक पदार्थ हैं, इसलिए उनके पदार्थों की तो तुलना की जा सकती है, जैसे हमारे पंच भौतिक देह हैं हमारे रूपों की, मेरे की इनकी परस्पर थोड़ी बहुत तुलना की जा सकती है, क्योंकि हम तो अनेक हैं, और वहां चेतन सत्ता तो एक ही है, उसके सदृश वैसी चेतन मनुष्य तो अनेक हैं, हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, तो यहाँ तो कुछ रूप का भेद हो सकता है, तो वहां चेतन तो अनेक नीना है। अगर अनेक चेतन मानोगे, जैसे अणुवादी जीवात्माओं को अणु मानते हैं चेतन, तो अनेक अणुओं में परस्पर भेद मानना पड़ेगा, रूपों का भेद मानना पड़ेगा, और अगर रूपों का परस्पर भेद नहीं तो सबका एक ही उपादान कारण मानना पड़ेगा। तो इसलिए अगर बहुत अणु चेतन जीवात्मा मानोगे एक एक शरीर में, तो रूपों का भेद मानना पड़ेगा, जैसे हमारे शरीरों में हमारी आकृतियों के रंग रूप का भेद है, ऐसे वहां चेतन का भी भेद मानना पड़ेगा, क्योंकि अनेक चेतन है। तो अगर चेतन एक ही हम मान लेते सर्वत्र आकाश की तरह, तो फिर रूपों में कोई अंतर नहीं होगा। तो इसलिए चेतन भगवान के रूप की तुलना के लिए कोई तत्सदृश पदार्थ नहीं, उसके रूप की अनुभूति तो होती है, पर किसके समान उसकी तुलना करें, कौन सी मिसाल देने, कौन सा दृष्टांत देने, ऐसा कोई पदार्थ नहीं मिलता है। पर रूप भगवान का भी मानना पड़ेगा, का जो जल है कांति, क्योंकि उस वक्त इसमें मन के अंदर कुछ श्वेतमा और नीलमा होती है, इसका जो कलर होता सत्य प्रधान, और जरा और जब रज प्रधान इसमें आता है फिर और अधिक जरा नीलेपन पर आ जाता है, और क्योंकि अहंकार से इसकी उत्पत्ति हुई है सत्य और रज के अहंकार से, इसलिए दोनों धर्म इसके अंदर वर्तमान रहते हैं और दोनों इंद्रियों के साथ ये मिल करके कर्म करता है और भोग भी करता है। तो सत्व प्रधान जो प्रभा जल है उसका संबंध और पोषण ये करता है, और जिस वक्त संपर्कात समाधि की अवस्था में केवल सूक्ष्म शरीर का विज्ञान और उनकी इंद्रिया आदि का विज्ञान होता है तब सत्व प्रधान ये प्रभा रहता है, और जब भोग की अवस्था में प्रवृत्त होते हैं इंद्रिय और मन तब ये भी रज प्रधान हो जाता है जल्दी, क्योंकि पदार्थ के संबंध से इनमें भी परिवर्तन आ जाता है, जैसे बहुत सी चीजों के मिलने से तीसरा और विकार रूप पैदा हो जाता है। और जब इसकी तमय प्रधान अवस्था आती है, स्तब्ध अवस्था होती है, वो निद्रा की अवस्था होती है, निद्रा की अवस्था में पराय स्थिति रहती है, वहां ज्ञान किसी प्रकार का ऐसा नहीं होता, तो इसलिए प्रभा नाम का जल जो है वो तम की अवस्था में, निद्रा की अवस्था में स्तब्ध सा रहता है। ये तीन अवस्थाएं इसमें सात्विक राजस और तामस भेद से आती है, ज्ञान की स्थिति में समाधि की स्थिति में सत्य प्रधान रहेगा जल, और कर्म और व्यापार जिस वक्त भोग होता है इंद्रियों का सूक्ष्म शरीर का या कारण इस स्थूल का भी भोग होगा तब रजय प्रधान ये भी खोलने लगता साथ में, और जब निद्रा की अवस्था आती है सब स्तब्ध हो जाती है, इंद्रिया आदि शरीर आदि शांत होते रहते हैं और व्यापार सूक्ष्म इसका बना रहता अपने स्वरूप में स्थिति बनी रहती है। जल है रसना नाम का, जिसका विशेष ज्ञान रसना के द्वारा होता है, और छह प्रकार के रसों का ज्ञान इसका यहाँ आन करके होता है, इसकी भी सात्विक राजस और तामस अवस्थाएं हैं। जिस वक्त हम किसी प्रकार का इंद्रियों के द्वारा भोग नहीं करते उस वक्त रसना में जो जल रहता है वो सत्व प्रधान सा रहता है, केवल ज्ञान की हमारी वहाँ प्रधानता होती है पदार्थों के स्वरूपों को समझने के लिए, पदार्थों के आकार प्रकार इंद्रियों के या स्थूल शरीर के आकार प्रकार को समझने के लिए संपर्कात समाधि का विषय होता है, कि जैसे ये रसना इंद्रिय क्या काम कर रही है, नेत्र इंद्रिय क्या काम कर रही है, स्पर्श इंद्रिय, ये हमारा विज्ञान का अध्ययन होता है मस्तिष्क में कि ये इंद्रियों के किस किस प्रकार के व्यवहार हैं। तो जब इनके व्यवहार तो हम करते नहीं, व्यवहार हमने पहले किए हुए हैं, पर व्यवहारों को स्मरण करते हुए उन पदार्थों का हम साक्षात्कार कर रहे हैं, पदार्थ भी सामने है उनके, उनका कर्म और व्यवहार इस वक्त भले ना हो पर कर्म और व्यवहार हमने पहले कर करके देखा है, पदार्थ हमारे सामने है, कर्म और व्यवहार उनके परिवर्तनों को भी स्मरण करते हैं, पदार्थ को भी सामने करते हैं, फिर उसकी तुलना करते हैं पदार्थ के साथ भी, ये पदार्थ जो हमने कर्म किए थे इनके साथ में, इसमें नेत्र आदि नेत्र इंद्रिय में स्पर्श इंद्रिय में घटते भी है ना। तो इस प्रकार का अध्ययन जब इंद्रियों का होता है और शरीर का होता है तब वो ज्ञान प्रधान की सत्व अवस्था होती है, और ये रसना जल भी सत्व रूप से रहता है और ये इंद्रियों में वर्तमान रहता है, यहाँ प्रधान रूप से इसका जिह्वा में इस गंडस फल में इन ज्ञान वाहक तंतों से ऊपर भी इसका गमनागमन होता रहता पर स्थूल रूप में। तो रजय प्रधान अवस्था जब इसकी होती है, जब जैसे युद्ध आदि के कर्म होते हैं, दूसरे क्षोभ आ जाते हैं, हमें क्रोध आवेश आदि आता है, काम आदि के वेग होते हैं, जब मन में भी विशेष क्षोभ हो जाता है, इंद्रियों में भी विशेष क्षोभ हो जाता है, और बुद्धि आदि में भी विशेष विशेष अक्षोभ के समय ये रज प्रधान हो जाता है और मुंह सूखने सी लगता है, तंग सी होने लगता है और बुरी हालत सी इसकी हो जाती है, रस भी सूखने लगता है और ये भी कंपित सा होकर क्षुब्ध होकर के उनके साथ सूक्ष्म सा हो जाता है, तो इसमें हृदय प्रधान की अवस्था होती है। जब शांत निद्रा की अवस्था आती है तब सारे इंद्रिय और शरीरों के साथ के व्यापार बंद रहते हैं, जिह्वा को भी पता नहीं रहता है कि मेरे अंदर रस है, सूखी है या गिली है, बाद में उठ के अनुमान करता है। तो ये तमय प्रधान अवस्था इसकी निद्रा की अवस्था में, और वो जागृत की स्वपन और जागृत दो समान, तो वो जागृत की अवस्था में दोनों अवस्था आती है। समाधि की अवस्था में भी सत्य प्रधान और जो कर्म और व्यापार रजोगुण होता है वो भी जागृत में ही आता है, तो इसलिए जागृत का निद्रा का अंतर है। और स्वपन जो एक अवस्था तीसरी है वो भोगे हुए पदार्थों का स्मरण ही होता है, वो एक प्रकार से ऐसी भिन्न अवस्था नहीं है, वो भी है तो जागृत से उससे भिन्न, क्योंकि निद्रा में भी स्मरण नहीं होता और जागृत में दूसरे प्रकार से गया भोग हो करके भी प्रत्यक्ष हो जाता है, पर स्वपन की अवस्था में और कुछ ज्ञान न होकर के केवल भोगात्मक पदार्थों का ही जो स्मरण होता है, इसलिए इनसे भिन्न एक अवस्था हो जाती है। तो जागृत की अवस्था में सत्य प्रधान और रजय प्रधान होते हैं और तमय प्रधान केवल निद्रा की अवस्था में होता है। प्रकार इन बातों के वर्णन करने का आप शंका करते हैं, आपका ध्येय क्या है? हमारा ध्येय ये है कि आप लोग अध्यात्म विद्या का अध्ययन कर रहे होंगे, जैसे कॉलेजों में कोई अध्ययन किया जाता है, इसी प्रकार आप अध्यात्म विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, और इस अध्ययन से, इस विज्ञान से, पदार्थों के भेद से, उनके स्वरूप से, उनके निरीक्षण से, उनके आकार प्रकार से, उनके स्वरूपों का, उनके गुणों का वर्णन करने से आपका विज्ञान, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी बुद्धि सूक्ष्म होगी। और ये जो पदार्थों के भेद इस प्रकार कर रहे हैं, सात्विक राजस तामस भेद आदि, और इनके स्वरूपों का भी भेद का वर्णन कर रहे हैं, इससे भी आपकी बुद्धि के अंदर प्रखरता आ जाएगी। इतने जो कट्ठे पदार्थ यहाँ नौ प्रकार के जल का यहाँ कथन कर दिया, तो इतनी जब तक सूक्ष्म बुद्धि नहीं होगी तब तक इन भेदों का ज्ञान कैसे होगा। इसी प्रकार और भी इंद्रियां यहाँ पड़ी है इस मस्तिष्क के अंदर, जहाँ पचासों पदार्थ कट्ठे पड़े हुए कमरे में, तो वहाँ भिन्न भिन्न पदार्थ के रूप को, उसके गुण को देख करके किसी ने कह दिया फलानी चीज उठाओ, वहाँ सौ चीजें पड़ी है, नौकर से कहा गया बहुत सी चीजें पड़ी जा फलानी चीज। अब जब तक उसने चीजों का अध्ययन नहीं किया होगा, पढ़ा नहीं हुआ होगा, देखा नहीं होगा, रखी नहीं होगी, संभाली नहीं होगी या उसके सामने रखा, तब तक उसको कैसे ज्ञान होगा। तो इसी प्रकार जब तक इन सूक्ष्म पदार्थों के, इस मस्तिष्क के पदार्थों के विज्ञान का, स्वरूप का, आकार का, प्रकार का आपके सामने वर्णन नहीं किया जाएगा, तो जब आप समाधि की अवस्था में जाकर बैठोगे, उस बुद्धू नौकर की तरह जाके देखोगे, तो उसको तो कुछ भी नहीं पता लगेगा, क्या मैं ले जाऊँ, उसने तो चीज मांगी, नाम भी नहीं जानता, आकार प्रकार भी नहीं जानता। तो जब तक आप उसके आकार प्रकार विज्ञान पूर्वक नहीं समझ लोगे, अंदर देखोगे क्या, उस बुद्धू नौकर की तरह बन जाओगे। तो अगर समझदार व्यक्ति की तरह जाओगे, ये विज्ञान अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा, जाना होगा, जब मस्तिष्क में बैठोगे आप जिस चीज को कहा, बुद्धि को भी खोज लोगे, मन को भी खोज लोगे, और उसके व्यापार को भी, और प्रभा जल को भी, अमृत जल को भी खोज लोगे, और जो शपर दूसरी इंद्रियों के अगर गुणों का वर्णन करूं या दूसरे पदार्थों का वर्णन करूं, तो सारे यहाँ भरे हुए सैकड़ों ही पदार्थ होंगे या भेद विशेष से। तो इतनी सूक्ष्म जब तक बुद्धि नहीं होगी, तब तक आत्मा के खोज की, समझने की, जानने की भी बुद्धि पैदा नहीं होगी। तो बुद्धि को सूक्ष्म बनाने के लिए, प्रखर बनाने के लिए ये इतना व्याख्यान किया जा रहा है, वरना अगर चित्तवृत्ति निरोधी करना तो बस बैठ जाओ शाम। इस प्रकार की सूक्ष्म हो जानी चाहिए मेडिटेशन के द्वारा। जब हम परमात्मा को सब जगह व्यापक समझते हैं, तो उसकी व्यापकता हरेक पदार्थ के अंदर हमें प्रतीत होनी चाहिए। अब जैसे आकाश की व्यापकता, जो भी दृश्यमान पदार्थ हैं सबके अंदर आकाश की हर एक को प्रतीति होती है। तो जैसे आकाश की प्रतीति वायु में, अग्नि में, पृथ्वी में, जल में प्रतीति होती है, सबको पार करके निकला हुआ है, ऐसे ही इसके साथ मिलती जुलती कोई और सत्ता आकाश के ही समान हो और वो सारे बल्कि आकाश में भी व्याप्त हो करके निकली हुई हो, क्योंकि आकाश भी उत्पत्ति वाला है, आकाश की भी सब उत्पत्ति मानते हैं। तो जो उत्पत्ति मान पदार्थ हुआ करता है वो सावैव हुआ करता है, उसमें देश विशेष स्थान विशेष हुआ करते हैं। तो इसलिए आकाश जो है ये भी उत्पत्ति वाला है, पर इससे भी इसका भी कोई उपादान कारण इससे भी सूक्ष्म मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार की बुद्धि को सूक्ष्म बनाना है कि जैसे आकाश की व्याप्ति सब दृश्यमान पदार्थों में अनुभव में आती है, ऐसे उस चेतन सत्ता की व्याप्ति भी हमें आकाश के सब पदार्थों में उसकी प्रतीति होनी चाहिए। जल भी दृश्यमान और इतना स्थूल है, इसको अग्नि व्याप्त करके रह जाती है, तभी जल के अंदर हमें उष्णता प्रतीत होने लगती है। जब हम पानी मुँह से निकलता है तो वो भी उष्ण निकलता है, गर्म निकलता है, तो अग्नि इससे सूक्ष्म है। तो इसी प्रकार ये जो जल है हमारे शरीर की रचना में ये सहकारी उपादान कारण बना और इसका चौथा दर्जा है, आकाश, वायु, अग्नि और जल। तो जल जो है पृथ्वी के भाग को इसने संगठित किया है, जैसे मिट्टी को जल संगठित करता है पिंड का पिंड बन जाता है, ऐसे ही पृथ्वी के भाग को ये पिंड के रूप में इस रूप में इसने बांध करके रखा है। तो इसके वह 10 स्थान मैंने आपको बताए थे, 3 यहाँ तक और 4 यहाँ तक नाभि तक। तो 3 का वर्णन कर चुका था, रसना का और प्रभा का सवेरे वर्णन हुआ था, कल भी हुआ था। तो आज एक जिसको कफ कहते हैं, शीतल शीतता, या एक जल का भाग स्वच्छ सात्विक राजस और तामस भेद से कफ जो है, कफ भी 2 प्रकार का होता है, एक तो गोया जमा हुआ कफ होता है, जैसे कि जब ये ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो मोटा मोटा थूक बलगम उसके साथ निकला करती है। तो जिस वक्त यहाँ के भाग में जल सप्त प्रधान होता है तो उस वक्त इसमें कफ आदि इस प्रकार का मोटा भाग पैदा नहीं होता, और ये जो हमारे फुफ्फुस है उस जल को जैसे कोई स्पंज रख दो ना, जल के यहाँ ब्लॉटिंग पेपर होता है, तो इस तरह स्पंज से हमारे फुफ्फुस, जिनको ये कहते हैं कोश, जो वायु को जल को छान करके ग्रहण करते कराते हैं, ये जो हम बाहर से ऑक्सीजन वायु लेते हैं इसको भी वो धारण कर करके नीचे शरीर में फैला देते हैं कोश। तो इनमें संकोच और विकास रूप धारण होता है इन कोशों में। तो इस देश में सप्त प्रधान जल वैसे ही वर्तमान रहता है, ये कोश स्पंज की तरह उसको धारण करके रहते हैं और फिर नस नाड़ियों के द्वारा वह सब लेकर के वह ये कोश नस नाड़ियों में प्रवृत्त करते हैं, भेजते हैं जल को सारे शरीर में व्याप्त सा बनाते हैं। क्योंकि पृथ्वी का जो स्थूल भाग है, जैसे पृथ्वी के भाग आदि मांस की पेशियां आदि हैं, ये पृथ्वी का भाग है, हड्डियां हैं ये पृथ्वी के भाग हैं, और ये केस हैं, ये नाखून हैं, ये नस नाड़िये हैं, दाढ़ी मूछ है, ये सब पृथ्वी के भाग हैं। तो ये जल से ही वह पनपते हैं, बढ़ते हैं, विकास होता है, जैसे वनस्पति औषधि आदि का जल से विकास होता है, बढ़ते हैं, हरी भरी फूलती फलती रहती हैं, ऐसे ही हमारे सारे वह शरीर के जो अवयव हैं वो जल से सिंचित होते हैं, बढ़ते हैं, फूलते हैं, फलते हैं, विकास भाव को प्राप्त होते हैं, तो अनेक रूपों में परिणित होकर के शरीर का पालन पोषण करते हैं। वक्त ये रज प्रधान हो जाता है इस भाग का जल, तो इसमें खास खास प्रधान कारण हुआ करते हैं, जैसे पूरा क्रोध आ जाना, क्षोभ पैदा हो जाना, या अत्यंत उष्णता गर्मी आदि होना, या जैसे दौड़ना आदि कर्म होना, या मैथुन आदि के कर्म होना, या और बहुत कठिन एक्सरसाइज होना, जैसे कि क्रोध आदि के समय में होते हैं, तो उस वक्त इस ये जल जो है इस देश का क्षुभित्सा होने लगता है और ये मोटे कफ के रूप में परिणित होने लगता है ज़्यादा गर्मी से, और बहुत शीतता भी। वैसे शीतल इसका स्वाभाविक गुण है, अपसु शीतता, वह शीतता इसका स्वाभाविक गुण है। अमरनाथ की गुफा में मुझे रहना पड़ा एक दफ़े, तो मैं गया था शिवरात्रि पर, फरवरी माह के मार्च में, तो ये शर्त लगी थी कश्मीरी पंडित से कि वहाँ शिवलिंग की मूर्ति बर्फ की बनती है और वो 15 दिन में घटती है और 15 दिन में बनती है। तो मेरी ये बात समझ में नहीं आती थी, मैं कि जड़ पदार्थ में इस प्रकार घटना बढ़ना कैसे हो सकता है। तो मैं अपनी जिद पर था और पंडित अपनी जिद पर थे, तो 200 रुपये की शर्त लगी कि अगर वो घटती बढ़ती होगी कुदरती रूप में तब 200 रुपये मैं दे दूंगा, अगर कोई और बात होगी तो तब तुम्हें देने होंगे। तो मैं शिवरात्रि पर वहाँ पहुँचना था, तो मैं सुनमरग के रास्ते चला, तो खैर मैं वहाँ लंबी यात्रा में सारी बात कहता नहीं, मैं वहाँ पहुँचा, 4 मेरे साथ में मजदूर थे कुली, सुनमरग से मैंने लिए थे। तो वो जब मैं वहाँ पहुँचा गुफा के पास में, सायंकाल का 4 बजे का टाइम था, इससे कुछ पहला थोड़ी सी धूप सी आई थी, तो मैं जा करके अमरनाथ की गुफा के पास में जोर से हरी ओम के खूब नारे लगाए, और वो जो मजदूर थे वो कहने लगे बाबा क्या करता है, हम मर जाएंगे। मैं कह क्या होगा, अकि यहाँ भी सीन आ जाएगी, हम दब जाएंगे। तो मैं ये देखना चाहता था कि सीन बर्फ को कहते हैं लोग कैसे आती है। तो मैं वहाँ जोर जोर से चिल्लाया खूब, तो कोई बादल वहाँ आसपास नहीं था, उस गुफा के आसपास सामने नाला तो सब बर्फ से ढका हुआ था, और हम भी कोई सुनमरग से लेकर के बर्फ में ही जाना पड़ा, बालतल 10 मील है बर्फ तक, और फिर आ गए तो बर्फ बर्फ में ही जाना पड़ा हमें। तो खैर मैं वहाँ पहुँचा, जोर जोर से नारे लगाए, कोई 10 मिनट के अंदर घनघोर खटा बादल छा गए, और वो मेरा सामान फेंक करके और मुझे गाली देते हुए, वो जो मजदूर थे और भागे, उन्होंने मजदूरी भी नहीं ली, और मैं वो सामान पमान कट्ठा पट्ठा कर करके वहाँ बैठा। सर्दी इतनी सख्त थी कि मेरा तो खून जमा जा आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आती थी, प्यास बड़ी लग रही थी, बर्फ खाऊं तो और प्यास लगे। तो वहाँ जो बर्फ गिरनी शुरू हुई, 4 दिन लगातार बर्फ गिरती रही, इस जोर से चिल्लाने के इतने बादल वहाँ घनघोर इकट्ठे हो गए, और 4 दिन बराबर उसके गुफा के आगे 15-20 फुट बर्फ जम गई, पानी का वहाँ नाम निशान नहीं था। तो खैर मैंने अब क्या किया, मैं कुछ सत्तू ले गया था थोड़ा सा, और कुछ लकड़ी चावल, वो तो जले ही नहीं, दिया सलाई गिल्ली होगी, चावल की कोई बात नहीं। 8 दिन तो मैं सत्तू खाया, बर्फ खाता रहा, मुंह सूखता था, पूरी हालत। अब सर्दी ये जमती जा रही थी, होया जैसे क्या करूँ, सांस आना मुश्किल था, हाइट भी वहाँ बहुत थी, ऑक्सीजन कम थी, वनस्पति कुछ नहीं थी। तो मैंने अग्नि प्रदीप्त प्राणायाम करना शुरू किया। अग्नि प्रदीप्त प्राणायाम से ये होता था कि 5-7-10 मिनट में मेरा शरीर गर्म हो जाता था और इन जगहों में पसीना आ जाता था, पर फिर थोड़ी देर के बाद, फिर 1-2 घंटे में फिर सर्दी लगने लगी। तो मैं 10-15 दिन प्राणायाम कर करके बड़ी मुश्किल से जीवन को वहाँ धारण करके बैठा, और मेरा सत्तू तो खत्म हो गया था, चावल रह गए थे, और चावल मैंने खाने शुरू किए तो कब्जी करने लगे, टट्टी ना आए, चावल कच्चे खा करके क्या जीवन रहना था। अब शिवलिंग की बात सुनो, उसे गुफा के ऊपर बर्फ ही बर्फ पड़ी रहती है उन दिनों में, और वहाँ उसमें सिम सिम करके पानी टपकता है गुफा के किनारों में ऐसे ऐसे ऊपर की, तो सर्दी ज्यादा होती है, वो पानी जमता जमता बर्फ बन जाता है, ऊपर से टपके गिरते हैं। यहाँ आपने शहर में भी देखा होगा, जो श्रीनगर में रहते हैं, छतों के बड़े बड़े डंडे से लटकने लगते हैं बर्फ के, ऐसे जमता चला जाता है, इतने बड़े बड़े डंडे छतों में यहाँ लटकने लगा करते हैं। तो ऐसे ही वो बर्फ बर्फ ऊपर पड़ी रहती है, वो सिम सिम के इन दिनों में भी पानी टपता रहता गुफा में, तो वो पानी जमता रहता है। तो उस वक्त कोई मेरे ख्याल में 8-10 हजार मन बर्फ उसमें पड़ी हुई होगी, सारी पिंगल पिंगल करके जमी हुई थी, और उस पर बड़े बड़े 14 शिवलिंग बने हुए थे। वो पानी ऐसे गिरता, मोम ऊपर से आप पिंगाल करके घी डालो ना ठंडी जगह में, तो घी जमता चला जाएगा, उसका शिवलिंग बन जाएगा, मोम का बन जाएगा, तो पानी का वहां शिवलिंग बन जाता है। तो इस तरह जब वो पानी, सर्दी ज्यादा होती है, ठंड बहुत पड़ती है, वो पानी जम जम कर करके शिवलिंग बनते चले जाते हैं, और जब गर्मी आती है तब वो पिंगल पिंगल करके खत्म हो जाते हैं। बाकी कुदरती बनने वाली कोई बात नहीं, कहीं भी ये चीजें बन सकती हैं, और किसी गुफा में बना लो पानी गिरा गिरा करके, कोई ऐसी खास बात वहां देखी थी। तो मैं तो कह रहा था कि अपसुशीतता जल के अंदर स्वाभाविक शीतल गुण है, तब ये बर्फ के रूप में जम जाता है। तो हमारे ये लंग्स जो फुफ्फुस हैं, सर्दी के कारण से अगर अंदर अपनी गर्मी ना हो स्वाभाविक, तो ये लंग्स भी जम जाते हैं, जकड़ जाते हैं, और अनेक प्रकार के रोग के हेतु बन जाते हैं। सांस खींच खींच करके आने लगता है, दमा जैसा हो जाता है, सांस भरता नहीं, कुछ सुकड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, बहुत सर्दी के कारण बहुत, और गर्मी से ये दग्ध भी हो जाते हैं। अब ये जो तपदिक आदि लोगों को हुआ करता था, इसमें ये कोष जो होते हैं ज्यादा अत्यंत गर्मी से दग्ध से हो जाते हैं, और वहाँ का जो कफ हुआ करता है वो पीला पड़ करके सख्त सा हो जाता है, और छाती से निकलना भी मुश्किल हो जाया करता है। तो इसलिए ये हृदय प्रधान अवस्था के अंदर ये जल जो है ये गया रजोगुणी सा बन जाता है, और कलेश का हेतु, दुख का हेतु, मरण का हेतु भी हो जाता है। और तमह प्रधान की अवस्था में ये जल, जैसे निद्रा की अवस्था में कोई इसमें विकार नहीं होगा, चाहे सत्य के बाद निद्रा है, चाहे रज के बाद निद्रा है, वह निद्रा की अवस्था में, तमह प्रधान अवस्था में इसमें समान व्यापार होता रहता है, समान कार्य होता रहता है, समान रूप से शरीर का पालन पोषण रक्षण आदि होता है। तो तीन अवस्थाएं आती है इसमें, सात्विक, राजस और तामस। तो तीनों अवस्थाओं को, जल के भाग को, यहाँ कफ को समझना चाहिए। चेतना का इसके साथ क्या संबंध है, उसकी व्याप्ति का अनुभव करना चाहिए। हृदय प्रधान अवस्था में जब ये कफ जम जाता है तब चेतना की कैसी स्थिति हो जाती है, और जब ये पिंगला रहता है तब उसमें कुछ अंतर प्रतीत होता है। तो इसके व्याप्य व्यापक भाव संबंध को चेतन के, और उष्णता को, पहले उष्णता की व्याप्ति को देखना चाहिए अग्नि की, जल के अंदर, क्योंकि उष्णता फेफड़ों में छाती में बनी रहती, और फिर उस चेतन की उष्णता में और जल में व्याप्ति देखनी चाहिए। जल का पांचवा परिणाम आन करके, ये जो हमारा यकृत जिसको जिगर कहते हैं, इस भाग में आन करके ये मधुरता के रूप में बन जाता है। यकृत के अंदर पहुंच करके, जिगर के अंदर पहुंच करके ये जल कितना परिणित होकर के ये चल रहा है, तो यहाँ तो ये मधुरता के रूप में बन जाता है, और फिर इससे नीचे पकवाशय में पहुँच करके ये अक्षार के रूप में, नमक के रूप में परिणित हो जाता है। तो ये मधुरता और अक्षार का हालांकि परस्पर बहुत विरोध है, परंतु ये देखा गया है कि बहुत सी चीज़ें मीठी हम रख दिया करते हैं तो वो भी खटास भाव को प्राप्त हो जाया करती हैं, और फिर खार के रूप में परिणित हो जाया करती हैं। तो ये जल वह स्थान भेद से, शरीर के भेद से इतने रूप में ये परिणित हो जाता है। तो ये इसे ग्रंथि के अंदर, जिगर की ग्रंथि के अंदर ये जाकर के मधुरता के रूप में परिणित होता है, क्योंकि मधुर रस भी शरीर के लिए पोषक होता है, और गालने के लिए भी कुछ ठीक होता है, और अक्षार तो बहुत जल्दी गला देता है। तो ये मधुर रस भी कुछ एक प्रकार से, जैसे तिजाब के अंदर गोय तीक्ष्णता होती है, ऐसे इस मधुर के अंदर भी और अक्षार के अंदर भी, दोनों के अंदर तीक्ष्णता होती है, भेदन करने की, गलाने की, पकाने की शक्ति होती है। तो ये जल का ही परिणाम विशेष बन जाता है। जिस समय सत्व प्रधान ये हमारा जिगर होता है तो उस वक्त तो गया इसके अंदर रस बहुत ठीक ठाक बनते रहते हैं, पाचन शक्ति आदि ठीक कार्य करती रहती, कोई विकार नहीं होता। और जब यह विकृत हो जाता है रजोगुण की प्रधानता से, जो जैसे खान पान आदि ठीक ना हो और आहार ठीक ना हो, व्यवहार ठीक ना हो, क्रोध का समय हो या खाने पीने के तले हुए वगैरह ज्यादा घृत आदि सख्त चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करता हो या पानी भी अच्छा ना पीता हो, तो जब रजह प्रधान हो जाता है तो ये यकृत जो होता है ये वास्तविक में हमारे सारे खाने पीने का आधार इसके ऊपर निर्भर होता है। अगर यहाँ मधुर रस अच्छा तैयार नहीं होगा तो हमारा खाना पीना पचना, इसमें रक्त आदि का बनना, रसों का बनना, ये भी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए यकृत को ठीक रखना आवश्यक होता है खान पान आदि के नियम से, युक्त आहार विहार आदि कर्म से। तो यहाँ तीन प्रकार से ये रस मधुरता के रूप में, और जब ये क्या नाम खटासा बन जाता है जब ये विकृत होता है, और फिर ये तेजाब से के रूप में विकृत हो करके और आंतों को, इनको आमाशय और पकवाशय को भी खराब करने लगता है जब ये दूषित हो जाता है। तो इसको सात्विक रखने के लिए, रजय प्रधान्य बढ़ने के लिए यत्न करते रहना चाहिए। और जब तमय प्रधान की अवस्था तो एक प्रकार से निद्रा में ही आती है। तो ये रजय प्रधान जो होता है ये जागृत में रहता, और सत्य प्रधान भी, और समाधि की अवस्था में तो वैसे ही कितना भी विकृत हो सत्य प्रधान बन जाया करता है। योगी अपने गुणों को, खाद्य पदार्थों के गुणों को भी परिवर्तन कर लिया करता है, मनोबल से पदार्थों के गुणों को भी परिवर्तन करने में समर्थ हो जाता है योगी। जैसे केमिकल आदि से पदार्थों के गुणों को बदलते हैं, दोष गुण को बढ़ाते हैं और घटाते हैं, औषधि जब बनाते हैं दोषों को बढ़ाते हैं और घटाते हैं, इसी प्रकार योगी इन पदार्थों के सेवन से, या सात्विक बनाना हो, राजसिक बनाना हो, तामसिक बनाना हो, मनोबल से अपने व्यवहार से बनाने में समर्थ हो जाता है। मधुर रस अनेक प्रकार का होता है और अक्षार रस भी अनेक प्रकार का होता है। जैसे मधुर रस, अब जैसे शहद होता है ये भी मीठा होता है, गन्ने का रस होता है ये भी मीठा होता है, गुड़ आदि ये भी मीठा होता है, और जैसे और दूसरे पदार्थ होते हैं वो भी मीठे रस होते हैं। तो मीठे रस भी अनेक प्रकार के हो जाते हैं। इसी प्रकार अक्षार रस भी, जैसे फटकड़ी में भी अक्षार होता है, नमक में भी अक्षार होता है, सोडे में भी अक्षार होता है, नसादर में भी अक्षार होता है, काले नमक में भी अक्षार होता है, सिंधे नमक में भी अक्षार होता है, और जौखार में भी अक्षार होता है। तो ये अक्षार भी अनेक प्रकार के बन जाते हैं। तो एक ही रस अनेक रूप से परिणित होता चला जाता है और भिन्न भिन्न रूप में वनस्पति औषधियों में चला जाता है। इसी प्रकार ये हमारे यहाँ जो मशीनरी लगी हुई है ये इस जल में से ही स्वाभाविक ही, अब जैसे कि पृथ्वी में जा करके गन्ना बोता है यही रस है, जा करके पानी जो दिया जाता है एक सुदंड में जा करके मिठास भाव को प्राप्त हो जाता है, यही फीका जल हम पीते इस हमारी ग्रंथि में जिगर की में जा करके ये मधुर भाव को प्राप्त हो जाता है। इसमें कुछ कोश और ग्रंथियाँ ऐसी हैं जो जल को परिणित कर करके मधुर बना देती हैं। फिर आगे जा करके ये जो बड़ी आंत और छोटी आंत आती हैं और जो पकवाशय का इस ग्रंथि में जा करके वह अक्षार के रूप में परिणित हो जाता है, और कई प्रकार के अक्षार के रूप में परिणित हो जाता है। तो जैसा जैसा ये परिणाम क्रम होता जाता है वैसे ही वैसे रस आदि और शरीर की रचना बनती चली जाती है। तो इसलिए वह युक्ति पूर्वक इन रसों का सेवन करना चाहिए। ये रसी परिणाम भाव को प्राप्त हो करके जब ये रजत प्रधान होते हैं तो विकार पैदा किया करते हैं, जब ये रस सत्व प्रधान होते हैं तो शरीर के पोषक हुआ करते हैं, और जब तमय प्रधान हुआ करते हैं तो जड़ता सी लाया करते हैं शरीर के अंदर। तो इसलिए इन रसों का भी, या रस जो है ये जल का ही परिणाम विशेष है, और ये अनेक रूप से हमारे शरीर में ये जल ठहरता है परिणाम भाव को प्राप्त होकर, यही जल जा करके मूत्र के रूप में बन जाता है, क्षार रूप में दूसरे रूप में बन जाता है, और यही जा करके मधुमेह के रूप में
या पेशाब भी मीठा बनने लगता है। तो जब ये दूषित हो जाती हैं ग्रंथियां, तब इस प्रकार के या विकार शरीर के अंदर आने लगते हैं। तो ये शरीर तो तुम्हें एक प्रकार से ऐसी अमानत सी चीज मिली है, जैसे कुदरत की तरफ से तुम्हें अमानत मिली हुई हो, एक बड़ा भारी खजाना मिला हुआ है तुम्हें जीवन को धारण करने के लिए, संसार के भोग और ऐश्वर्य भोगने के लिए बड़े पुण्य कर्म से ये मानव देह मिला है। तो इसके अंदर सब प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, इसके हानि का, लाभ का, जीवन का, मरण का, कौन सा इसमें कार्य है, कौन से इसमें कारण है, किस प्रकार इसको सुरक्षित रखा जा सकता है, किस प्रकार हमारे लंबे जीवन का ये सारी बातें सोचने वाली समझने वाली हैं। ये ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, समाधि के द्वारा इन सब पदार्थों का साक्षात्कार शरीर में होता चला जाता है योगी को, और योगी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, बहुत दीर्घ काल तक रख सकता है। भी परिणाम भाव को प्राप्त होकर के रुधिर के रूप में परिणित हो जाता है। तो रुधिर भी, लहू जो है, ये जल का ही एक परिणाम विशेष है। कुछ अंश इसमें रहता है, पार्थिव अंश भी आता है, क्योंकि अगर रुधिर को इकट्ठा कर करके सुखाया जाए तो उसमें पपड़ी सी जम जाया करती है, तो जल तो उसमें से उड़ जाता है, पृथ्वी का भाग उसमें सूख कर रह जाया करता है। परंतु रुधिर के अंदर जल की ही प्रधानता होती है। रुधिर भी सात्विक, राजस और तामस तीन भेद से ये बनता है। प्राणायाम के द्वारा इन सब रसों की, इस जल की बड़ी शुद्धि होती है, इसलिए प्राणायाम बहुत उपयोगी रहता है इन जलों की शुद्धि करने के लिए। ये जो 10 संस्थान हैं जल के, वह प्रत्येक के लिए प्राणायाम बहुत उपयोगी रहता है। जैसे वायु गंदे जल को शुद्ध कर देती है, ऐसे ही अंदर ये विकार भाव को प्राप्त होकर के जल, प्राण वायु जो है, प्राणायाम जो है, इसको शुद्ध कर देता है, क्योंकि रक्त में अनेक प्रकार के विकार हो जाया करते हैं। जब सप्त प्रधान ये रुधिर होता है तब इसमें गुलाबी सा वर्ण रहता है, जब ये रजत प्रधान होता है तब इसमें बहुत लाल वर्ण सा हो जाता है, जब ये तमः प्रधान होता है तब इसमें लाल में काली मा आ जाया करती है। तो ये तीन प्रकार के भेद वाला ये रुधिर हो जाता है। जब ये प्राणायाम के द्वारा ये पतला और शुद्ध बना रहता है, और सब नस नाड़ियों के छिद्र जो रहते हैं खुले रहते हैं, उनमें इनका जमाव नहीं हो पाता, उसमें खून मोटा नहीं हो पाता, इसलिए प्राणायाम जो है ये जैसे वायु जो होती है दूषित जलों को वह शुद्ध कर दिया करती है, इसी प्रकार ये जो प्राणायाम है ये अंदर के दूषित जो जल हैं या रुधिर आदि भी जो दोष भाव को प्राप्त हो जाते हैं, प्राणायाम से उनकी शुद्धि हो जाती है, और वो सप्त प्रधान होकर के शरीर के रूप रक्षक, पालक, पोषक बने रहते हैं। तो ये चार प्रकार का जल, यहाँ कफ, यहाँ मधुर, यहाँ और क्षार, ये बड़ी ये जो पक्वाशय की ग्रंथि है, और रुधिर जो है वो इसके तलिया के अंदर और हृदय के अंदर जा कर के रहता है। ये संस्थान हैं इस रजय गुण प्रधान जल के, और ये सात्विक, राजस और तामस भेद से चार प्रकार के ये जल 12 अवस्था वाले हो जाते हैं। तो 12, 9 ऊपर के 3-3 और 4 यहाँ के 12 और 9 21, और कल फिर 3 प्रकार के जलों का नीचे का वर्णन करूँगा। तो ये 4 प्रकार का जल किस रूप में परिणित हुआ, अच्छा जल मीठा पीते हैं, स्वादु पीते हैं, जा करके वो मधुरता के रूप में हो जाता, क्षार के रूप में हो जाता, फिर धूसर सा पीत वर्ण का हो जाता पक्वाशय की ग्रंथि में जा करके, जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत के सिरे रहते हैं वहाँ ये जल जा करके धूसर रंग का बन जाता है, पीले से रंग का बन जाता है। इसका शुद्ध शुद्ध भाग तो पलिया आकर्षण कर लेती है, और निकृष्ट सा भाग गुर्दे आकर्षण कर लेते हैं, वो मूत्र को बना करके फेंकते हैं, और वो रुधिर के रूप में पलिया और हृदय रुधिर के रूप में परिणित होकर के ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि ये जो नाड़ी इसके साथ में लगी इसमें बहा करके और चलाते रहते हैं, हमारे जीवन का आधार बना रहता है।